राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन नंदन यशोदानंदन ब्रज जन नंदन यमुना तीरा बन चली। यमुना तीरा बन चली। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरसहस्री श्रीमद्भिष्टभायनिग्रहीश अभयचरणारविन्द भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रवचस्कोन फाउंडराचार्य शिव दि होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तिवृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोपी गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताय भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंद ऑल ग्लोरीज सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु एंड गौरांगन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद है अध्याय 15 पांडवों का सामयिक प्रस्थान श्लोक संख्या 43। बोलिए मेरे पीछे।
चीरवासा निराहारो बद्धवां मुक्त मूर्धजः दर्शयन्नात्मनो रूपम् जडोन्मत्त पिशाचवत् अनवेक्षमाणो निर्गात् अश्रण्वन् बधिरो यथा। क्षीरवासा निराहारो बद्धवां मुक्तमूर्धजः दर्शयन्नात्मनो रूपम् जडोन्मत्ते पिशाचेव अनवेक्षमाणो निर्गात अश्रण्वन् बधिरो यथा।
शब्दार्थ बोलिए।
चीरवासाः, चिथड़े ग्रहण किया, निराहारः, भोजन करना त्याग दिया, बद्धवाक् बोलना बंद कर दिया, मुक्तमूर्धजः बाल खोल दिए, दर्शयन् दिखाने लगे, आत्मनः अपना रूपम शारीरिक स्वरूप को, जड़ निष्क्रिय उन्मत्त पागल पिशाचवत् उजड की तरह, अनवेक्षमाणः प्रतीक्षा किए बिना, निरगात स्थित थे, अश्रण्वन् बिना सुने, बधिरः बहरा व्यक्ति, यथा जिस तरह। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने चिथड़े पहन लिए, ठोस भोजन करना बंद कर दिया, वे जानकर गूंगे बन गए और बालों को खोल दिया। इन सब के मिलने से वे एक उजड या पेशा विहीन पागल की तरह दिखने लगे। वे किसी वस्तु के लिए भाइयों पर आश्रित नहीं रहे, वे बहरे मनुष्य की तरह कुछ भी ना सुनने लगे। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा शिला प्रभुपाद की। इस प्रकार समस्त बाहरी झंझटों से छूटने पर उन्हें राजसी जीवन या परिवार प्रतिष्ठा से कुछ लेना देना शेष नहीं रहा और वे एक तरह से निष्क्रिय पागल उजड्ड की तरह बन गए और भौतिक मामलों के विषय में कुछ भी बोलना बंद कर दिया। तो यहाँ प्रभुपाद जी के तात्पर्य का पहला वाक्य अभी हमने पढ़ा है, इस पर कुछ चर्चा करेंगे। युधिष्ठिर महाराज की स्थिति अभी कैसी है? बिल्कुल लापरवाह है, गैर जिम्मेदार है, उन्हें कुछ मतलब नहीं है कि कहाँ क्या हो रहा है, कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं है ना। क्यों? क्योंकि अब उन्होंने एक दूसरी जिम्मेदारी अपनाई है। वो क्या है? अपने जीवन की, अब अगले जीवन की दिशा में जो है ना, अब वो जो है सचेत हो गए हैं कि उनको अगला जीवन कैसा प्राप्त करना है। इस जीवन की जितनी जिम्मेदारियां हैं वो सब छोड़ करके तो बिल्कुल बहरे और पागल और मूर्ख के समान वो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसके पहले उन्होंने सब जिम्मेदारियां जो है ना सौंपी हैं। ऐसा नहीं कि एकदम से सब ऐसे हो गए, नहीं, बहुत बड़े पृथ्वी के राजा थे, एकदम से ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसलिए श्लोक में बताया गया था कि स्वराट पौत्रम विनयनम आत्मना सुसमम गुणे, अपने समान गुणों में बहुत अच्छी प्रकार से, अपने समान गुणों में जो अपने पौत्र थे, कौन? परीक्षित महाराज, उनको स्वराट यानी सम्राट बनाया है कि नहीं, और बद्रीनाथ को बनाया मथुरा का शासक है ना। तो सब जिम्मेदारी सौंपी हैं। इसके बाद फिर जो है ना वे कैसे हो गए? बिल्कुल मूर्ख और पागल और बहरे के समान हो गए। तो आगे प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं, अब वे अपने उन भाइयों पर आश्रित नहीं रहे जो निरंतर सहायता करते थे। हमेशा अपने भाइयों पर आश्रित थे युधिष्ठिर महाराज, और उनके भाई भी युधिष्ठिर महाराज से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन अभी जो है बिल्कुल आश्रित नहीं। है? तो प्रभुपाद जी तुलना करते हैं कैसे, जैसे कि आकाश में जब हवाई जहाज उड़ते हैं तो फिर एक दूसरे का कुछ भी आश्रय नहीं ले सकते वो, है कि नहीं। हवाई जहाज जो है ना, अगर जमीन में है तो एक दूसरे से पहले कुछ जो सहायता करनी है या सहायता लेनी है वो ले सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो आकाश में उड़ते हैं तो एक हवाई जहाज दूसरे हवाई जहाज को ना तो सहायता दे सकता है ना सहायता ले सकता है। अब तो अपनी खुद ही चिंता करनी है और अपनी खुद ही सहायता करनी है, है ना। तो अब जो है ना मृत्यु काल में जो है ना, प्रभुपाद जी ने यही समझाया कि मृत्यु काल में कोई किसी की सहायता नहीं कर सकता है कि नहीं। मृत्यु काल के पहले हम भक्तों का संग कर लें, हम कुछ उपदेश दें, कुछ उपदेश श्रवण करें, है ना, ये सब हो सकता है ना। लेकिन मृत्यु काल में क्या है कि बस अब जो है ना आप हैं और आपके साथ भगवान है, और कोई नहीं कर सकता है, एकमात्र साथी भगवान होते हैं, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि अपने उन भाइयों पर आश्रित नहीं रहे जो निरंतर सहायता करते थे, क्यों, क्योंकि बिल्कुल बहरे जैसे हो गए, कुछ बात नहीं कर रहे हैं अपने भाइयों से, कुछ बात नहीं कर रहे हैं, निकल पड़े। लेकिन उनके भाई समझते हैं, युधिष्ठिर महाराज के जो भाई हैं वो समझते हैं जीवन भर युधिष्ठिर महाराज के कैसे विचार हैं वो जानते हैं, इसलिए उनके भाई भी उनके पीछे पीछे जा रहे हैं उसी रास्ते में, क्योंकि इतना एक दूसरे के साथ इनकी एकता थी इन पांचों भाइयों की कि वे जो है एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन अब जो है केवल एक लक्ष्य है युधिष्ठिर महाराज का, क्या, भगवान की प्राप्ति करना। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं सभी प्रकार की इस पूर्ण स्वतंत्रता को निर्भीकता की शुद्ध अवस्था यानी निर्भय पद कहते हैं। तो ये पूर्ण स्वतंत्रता जो युधिष्ठिर महाराज की इस समय है ये बिल्कुल आश्रित नहीं है, परतंत्र नहीं है, इसको कहें प्रभुपाद क्या कहते हैं, निर्भीकता की शुद्ध अवस्था निर्भय पद कहते हैं। तो ये अभियम जो दैवी संपत्ति भगवान ने 16वें अध्याय में बतलाई है, तो दैवी संपत्ति के 26 गुण भगवान ने 16वें अध्याय में बताए हैं, 16वें अध्याय की प्रथम 3 श्लोकों में। उनमें सबसे पहला गुण क्या है, अभियम, निर्भयता, है ना। और प्रभुपाद जी कहते हैं सन्यासी के लिए ये निर्भयता बहुत आवश्यक है, अभियम। तो यह निर्भयता का मतलब क्या है कि वो किसी से अपने कुछ संबंध नहीं बना रहा है। इस भौतिक संसार में हमें भय है, इसीलिए राष्ट्र से अपने अच्छे संबंध होने चाहिए, समाज के साथ अच्छे संबंध होने चाहिए, अपने परिवार के साथ अच्छे संबंध होने चाहिए, मित्रों के साथ अच्छे संबंध होने चाहिए, पत्नी के साथ अच्छे संबंध होने चाहिए, पुत्रों के साथ अच्छे संबंध होने चाहिए। क्यों, क्योंकि हमें कई प्रकार के भय हैं, इसलिए वे सहायता करेंगे, है कि नहीं। लेकिन अब युधिष्ठिर महाराज जो है निर्भीकता की शुद्ध अवस्था में पहुंच गए। निर्भीकता की शुद्ध अवस्था क्या है, मृत्यु का भी भय नहीं। युधिष्ठिर महाराज अब शरीर छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए हैं, और जब मृत्यु का ही भय नहीं रहा तो किसका भय है ना। तो ये निर्भयता की चरम सीमा है ना। तो भगवद गीता के 16वें अध्याय का जो शुरू के जो 3 श्लोक हैं उनके तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते हैं। पहली योग्यता सन्यासी की, प्रभुपाद लिखते हैं सन्यासी की पहली योग्यता निर्भयता होनी चाहिए, क्योंकि सन्यासी को किसी सहायक के बिना एकाकी रहना होता है, अतएव भगवान की कृपा ही उसका एकमात्र आश्रय होता है। जो ये सोचता है कि सारे संबंध तोड़ लेने के बाद मेरी रक्षा कौन करेगा, तो उसे सन्यास आश्रम स्वीकार नहीं करना चाहिए। उसे यह पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण या अंतर्यामी स्वरूप परमात्मा सदैव अंतर में रहते हैं, वे सब कुछ देखते रहते हैं और जानते हैं कि कोई क्या करना चाहता है। इस तरह मनुष्य को दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा स्वरूप कृष्ण शरणागत व्यक्ति की रक्षा करेंगे। उसे सोचना चाहिए मैं कभी अकेला नहीं हूँ, भले ही मैं गहनतम जंगल में क्यों न रहूं, मेरा साथ कृष्ण देंगे और सब तरह से मेरी रक्षा करेंगे। ऐसा विश्वास अभियम या निर्भयता कहलाता है। संन्यास आश्रम में व्यक्ति की ऐसी मनोदशा आवश्यक है, है? तो यहां पर हम यही देख रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज को अब कोई जो है संसार से अब संबंध नहीं रहा, और संसार की दृष्टि में वो कैसे मालूम पड़ रहे हैं, संसार की दृष्टि में कैसे मालूम पड़ रहे हैं, पागल हुँ? ये पागल हैं, पिशाच की तरह है, उन्मत्त है, अरे बहरे हैं, मतलब बहिष्कृत निंदनीय है ना, लेकिन शास्त्र की दृष्टि में बहुत ऊंची अवस्था है उनकी, है ना। तो ये जो है हम इसलिए युधिष्ठिर महाराज जो है इसलिए ये आचरण कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि जैसे अब कोई उनको तंग ना करे, आप समझे, ये बहुत जरूरी है। ऐसी स्थिति जो है प्रकट करना बहुत जरूरी है, जैसे कि आप कोई बातचीत ना करे उनसे किसी तरह की, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं रही। नहीं तो सोचो कितने लोग उनसे जुड़े हुए थे और कितने लोग उनके आश्रित थे, अब एकदम से ऐसे अगर राज्य को छोड़ करके जाएं तो बहुत सा मार्गदर्शन भी वो पाना चाहेंगे, युधिष्ठिर महाराज से बहुत सी बातें पूछना चाहेंगे, और फिर उसमें युधिष्ठिर महाराज फंसे रहेंगे फिर, है ना। तो आजकल के जो है जो जिम्मेदार समाज के नेता हैं या राज्य के नेता हैं, उनको जो ना सीखना चाहिए कि कैसे अपनी जिम्मेदारियों को किसी पर सौंप करके और बिल्कुल गैर जिम्मेदार हो जाएं। तो ये बहुत जरूरी है कि बिल्कुल बहरे के समान हो, कोई कुछ भी कहे वो नहीं सुनेंगे, है कि नहीं। तो इसी प्रकार का जो है जो आचरण है हम देखते हैं सुखदेव गोस्वामी के भी जीवन में हम देखते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी भी इसी प्रकार से, उनको भी बताया गया है कि वो कैसे हैं। कुरु और जांगल प्रदेशों में पागल गूंगे तथा मूढ़ की भांति घूमने के बाद, कैसे हैं सुखदेव गोस्वामी, पागल गूंगे और मूर्ख के समान घूमते हैं, जैसे कोई मतलब फालतू की बातें ना करें, संसारिक बातें ना करें। किंतु लोग जो ना मिलते हैं, है ना, आप कैसे हो, आपका परिवार कैसा है, है ना, कहाँ रहते हो, क्या खाते हो, क्या करते हो, है कि नहीं, तो दुनिया भर की चर्चाएं करते हैं। तो पागल गूंगे और मूर्ख की भांति घूमने के बाद जब वे व्यासपुत्र श्री सुखदेव हस्तिनापुर नगर में प्रविष्ट हुए तो वहां के नागरिकों ने उन्हें कैसे पहचाना। सुखदेव गोस्वामी कैसे श्रीमद् भागवत का प्रवचन कर रहे हैं और कैसे उनको पहचाना गया, ये प्रश्न कर रहे हैं शौनक आदि ऋषि नैमिषारण्यमें। कथम आलक्षिता पौरे संप्राप्ता कुरु जांगलां उन्मत्त मुह के जड़वन विचरन गज सह वही। तात्पर्य में प्रभु लिखते हैं अपना पितृगृह त्यागने के बाद, अपने पिता का घर त्यागने के बाद सुखदेव गोस्वामी पागल की भांति इधर उधर घूम रहे थे, अतएव उनके दिव्य पद को जान पाना नागरिकों के लिए कठिन था, बहुत मुश्किल है, अतः मुनि को देखकर नहीं अपितु सुनकर पहचाना जाता है। अब सुन करके जब श्रीमद् भागवत जब सुनाते हैं परीक्षित महाराज को सब ऋषि मुनियों को, तब पता चलता है कि ये कैसे हैं, देख करके नहीं पता चलता। बाहर से वे जड़ गूंगे पागल व्यक्ति प्रतीत हो रहे थे लेकिन वास्तव में वे महान दिव्य पुरुष थे। और सुखदेव गोस्वामी किसी के द्वार पर अगर रुकते भी थे तो कितनी देर रुकते थे, वे सुखदेव गोस्वामी किसी गृहस्थ के द्वार पर उतनी ही देर रुकते जितने समय में गाय दुही जा सकती है, मतलब आधा घंटा। वे उस घर को पवित्र करने के लिए ही ऐसा करते थे, पवित्र करने के लिए इतने समय की आवश्यकता है, पवित्र करने के लिए जितनी देर की आवश्यकता है उतनी देर रुकते थे किसी के घर को पवित्र करने के लिए। पवित्र करने में कुछ समय लगता है ना, प्यूरिफिकेशन में, है ना, तो उतनी देर रुकते थे जितनी देर में गाय धुई जाती है और घर को पवित्र कर देते थे कितनी देर में। सगो दोहन मात्रम ही गृहेशो गृह में दिनाम अवेक्षते महाभागस तीर्थी कुरवंत दाश्रम। तात्पर्य में प्रभु लिखते हैं, सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से मिले और उन्होंने उन्हें श्रीमद् भागवत के मूल पाठ की व्याख्या बताई। वे किसी भी गृहस्थ के दरवाजे पर आधा घंटा से अधिक जितने समय में गाय दोहली जाती है इससे अधिक नहीं रुकते थे और भाग्यशाली गृहस्थ से भिक्षा प्राप्त करते थे। वे अपनी शुभ उपस्थिति से उस घर को पवित्र करने के लिए ऐसा करते थे। अतः सुखदेव गोस्वामी ऐसे आदर्श उपदेशक हैं जो दिव्य पद पर स्थित हैं। जो लोग संन्यास आश्रम में हैं और भगवान के संदेश का उपदेश देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, उन्हें उनके कार्यों से यह सीखना चाहिए कि दिव्य ज्ञान प्रदान करने के अतिरिक्त गृहस्थों से उनका कोई सरोकार नहीं है। गृहस्थ से भिक्षा मांगने का उद्देश्य उसके घर को पवित्र करना होना चाहिए। सन्यासी को चाहिए कि वो गृहस्थ की सांसारिक संपन्नता से अनुरक्त होकर सांसारिक मनुष्यों का गुलाम ना बन जाए। सन्यासी के लिए ऐसा करना विष पान के समान या आत्महत्या से भी अधिक घातक है। फिर वर्णन है, सुखदेव गोस्वामी जब आए कहां पर, गंगा जी के तट पर, परीक्षित महाराज सब ऋषि मुनियों के द्वारा घिरे हुए थे और अब जाना चाहते थे कि मेरा क्या कर्तव्य है। तो ये 19वां अध्याय है पहले स्कंद का, श्लोक संख्या 25। उस समय व्यास देव के पुत्र वहां प्रकट हुए जो संपूर्ण पृथ्वी पर उदासीन और आत्मतुष्ट होकर विचरण कर रहे थे। उनमें किसी सामाजिक व्यवस्था वर्णाश्रम धर्म का कोई लक्षण प्रकट नहीं था। कोई भी चिन्ह उन्होंने धारण नहीं किया वर्णाश्रम का, जिसकी देखने से चिन्ह देख करके पता चले कि ये कौन से वर्ण और कौन से आश्रम के हैं, कोई चिन्ह नहीं था। वे सदैव स्त्रियों और बच्चों से घिरे रहते थे और इस प्रकार का वेश धारण किए रहते थे मानो सभी लोगों ने उन्हें उपेक्षित समझ रखा हो। उपेक्षित मतलब बेकार, ऐसे मतलब दिखाई पड़ते हैं। तत्राभवन भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छयागाम मतमानो नपेक्षा अलक्ष लिंगो निज लाभ तुष्टो वृदस्त बाल रवधूत वेश। तात्पर्य प्रभु लिखते हैं, ऐसे मुक्त जीव इस भौतिक जगत के मामलों में उदासीन रहते हैं। किसकी गद्दी चल रही है, किसका राज्य चल रहा है, कौन प्रधानमंत्री है, कोई मतलब नहीं। क्योंकि वे भक्ति की महान उपलब्धियों से आत्मतुष्ट रहते हैं। वे पूर्णतः आत्मतुष्ट थे सुखदेव गोस्वामी। इस प्रकार वे किसी औपचारिक विधि के आश्रित ना थे। औपचारिक विधियों तो उनके लिए आवश्यक हैं जो पूर्ण मोक्ष अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन श्री सुखदेव गोस्वामी तो अपने पिता की कृपा से सदैव इसी अवस्था में रहते थे। तरुण बालक होने के नाते उनसे समुचित वेश में रहने की आशा की जाती थी। तरुण थे, जवान थे, तो कोई भी आशा करे कि भाई ठीक से मतलब कपड़े धारण करो, है ना, लेकिन वो तो कोई एक भी कपड़ा नहीं धारण करते, कॉपिन भी नहीं उनके शरीर में, है ना, आशा की जाती थी। लेकिन वे नग्न रहते और किसी सामाजिक प्रथा में रुचि नहीं दिखाते थे। सामान्य जनता उनकी उपेक्षा करती थी, किंतु वे जिज्ञासु बालकों तथा स्त्रियों से घिरे रहते जैसे कोई पागल हो। किसी पागल को जैसे बच्चे घेर लेते हैं और स्त्रियां भी, जो सड़कों की स्त्रियां हैं वो घेर लेती हैं। इस प्रकार वे वहां पर तब प्रकट हुए जब वे स्वेच्छा से पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। अब ऐसी घटना भगवान ऋषभ देव के भी चरित्र में मिलती है। भगवान ऋषभ देव जो है इस भारतवर्ष के राजा थे और फिर ये अजनाब वर्ष चलाता था उस समय जब भगवान ऋषभ देव राजा थे। तो भगवान है साक्षात, तो वे जो है ना जब अपना राज्य अपने पुत्र भरत को दे देते हैं तो फिर वो भी ऐसे ही मतलब गैर जिम्मेदार हो जाते हैं, बिल्कुल उदासीन हो जाते हैं। तो ये श्रीमद् भागवत का 5वां स्कंद है, 5वां अध्याय भी है। इसमें लिखा है, कि भगवान ऋषभदेव ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को सिंहासन पर इसलिए बिठाया कि वो सारे संसार पर शासन करे। इसके पश्चात घर में रहते हुए भी ऋषभदेव कैसे हैं, घर में ही रहते हैं, लेकिन पागल की सरस नंगे और बाल बिखेरे रहने लगे। जैसे इसमें लिखा है, मुक्त मूर्धजा, बालों को बिखेर लिया। बद्धवांग, बद्धवांग माने बांध ली वाणी को, वाणी को बांध लिया और बालों को खोल दिया। लेकिन जो सामाजिक व्यक्ति होता है, समाज में जुड़ा जो सभ्य व्यक्ति होता है, वो क्या करता है, बालों को तो बांधता है और वाणी को खोलता है, खूब बोलता है, खूब बोलता है। तो लोग सोचते हैं, हाँ भाई बड़ा स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट हो यार, बोलने में बहुत निपुण है। लेकिन उन्होंने तो बिल्कुल वाणी को बांध लिया और बालों को खोल दिया, उल्टा है ना। तो ऋषभदेव भगवान भी कैसे हैं, पागल के सदृश नंगे और बाल बिखेरे घर में रहने लगे। मतलब क्या है कि अब कोई शासन के विषय में कोई भी उनसे कुछ बातचीत नहीं करेगा, क्योंकि इस प्रकार से रहते हैं। तब यज्ञ अग्नि को अपने में लीन करके विश्व का भ्रमण करने के लिए उन्होंने ब्रह्मवर्त को छोड़ दिया। अब चले गए, महल से बाहर चले गए। तात्पर्य में लिखा है, भगवान ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को जो उपदेश दिए थे वे वास्तव में उनके लिए ना थे, क्योंकि वे पहले से शिक्षित और ज्ञानी थे। इसके पहले भगवान ऋषभदेव ने सब उपदेश दे दिया कि कैसे रहना है समाज में और कैसे शासन करना है, भरत महाराज को और अपने सब पुत्रों को उपदेश दे दिया। लेकिन वो उपदेश अब उनके लिए नहीं है, ऋषभदेव को, ऋषभदेव के लिए नहीं है। वास्तव में ये उपदेश उन सन्यासियों के लिए है जो महान भक्त बनना चाहते हैं। भक्ति पथ पर अग्रसर होने वाले सन्यासियों को चाहिए कि भगवान ऋषभदेव के उपदेशों का पालन करें। अपने परिवार में रहते हुए उन्होंने गृहस्थ जीवन का परित्याग कर दिया था और एक नग्न पागल की भांति रहते थे। और फिर देखिए वैसे ही वर्णन, कैसे अवधूत वेश धारण करके भगवान ऋषभदेव अंधे, बहरे और गूंगे के समान। अंधे, अंधा का मतलब क्या है, कोई देखता नहीं है, किसी को नमस्कार नहीं करता है, प्रणाम नहीं करता है, बात नहीं करता है, तो अंधा ही, उसको भी अंधा ही कहा जाता है। हालांकि वैसे वो देख रहा है, पैर के नीचे देख रहा है कि पैर के नीचे कुछ गड्ढा तो नहीं है, अपने को संभाल रहा, लेकिन तो भी अंधा ही कहा जाता है जो अपने से सम्मानित किसी का सम्मान नहीं करता, कोई व्यक्ति उसके सामने आ रहा है तो। लेकिन वो बिल्कुल अंधे, बहरे और गूंगे के समान और मूर्ख के समान और भूत या पागल के समान मनुष्यों के बीच में इधर उधर घूमने लगे। यद्यपि लोग उन्हें इन नामों से पुकारते थे, देखो अंधा जा रहा है, देखो बहरा जा रहा है, गूंगा, पागल, ऐसे लोग बोलते थे, किंतु वे मूक बने रहे और किसी से कुछ नहीं बोले। तात्पर्य प्रबल लिखते हैं, अवधूत ऐसे व्यक्ति का बोध, अवधूत से ऐसे व्यक्ति का बोध होता है जो सामाजिक नियमों, विशेष या वर्णाश्रम धर्म की परवाह नहीं करता। हाँ, किसी वर्ण और किसी आश्रम के कर्तव्य का पालन नहीं करता, उसको अवधूत कहते हैं। नित्यानंद प्रभु को अवधूत कहा जाता है ना, अवधूत। किंतु ऐसा व्यक्ति अपने आप में लीन रहकर भगवान का चिंतन करता हुआ श्री भगवान से परम प्रसन्न रहता है, अर्थात जिसने वर्णाश्रम धर्म के नियमों का अतिक्रमण कर दिया है वो अवधूत कहलाता है। ऐसा व्यक्ति माया के बंधन से परे होता है और नितांत विलग और स्वतंत्र रहने वाला होता है। अब ऋषभदेव क्या करते हैं, विचरण करते हैं, नगरों में, गांवों में, खानों में, किसानों की बस्तियों में, घाटियों में, बागों में, सैनिकों की छावनियों में, गौशालाओं में, अहीरों की बस्तियों में, यात्रियों के विश्राम आलयों में, पर्वतों में, जंगलों में, आश्रमों के बीच में घूम रहे हैं ऋषभदेव। इसी प्रकार से नंगे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, मूर्ख हैं, है ना। जहां भी जाते उन्हें दुष्ट पुरुष उसी प्रकार घेर लेते जिस प्रकार जंगली हाथियों को मक्खियां घेर लेती हैं। दुष्ट लोग ऐसे घेरते हैं, जंगली हाथी अपनी चाल चलता है, मक्खियां घेरती हैं, तो उन्हें डराया जाता, धमकाया जाता और मारा जाता, उन पर पेशाब किया जाता और उन पर थूका जाता, यहां तक कि कभी कभी उन पर पत्थर फेंकते थे लोग, या बिस्छा मल फेंकते थे या धूल फेंकते थे, और कभी कभी उनके समक्ष लोग अपान वायु निकालते थे, अधोवायु। इस प्रकार लोग उन्हें भला बुरा कहते और अधिक यातना देते, किंतु उन्होंने कभी भी इसकी परवाह नहीं की, क्योंकि वे ये समझते थे कि शरीर का यही अंत है। वे आत्म पद पर स्थित थे और सिद्ध होने से ऐसे तिरस्कारों की तनिक भी परवाह नहीं करते थे, अर्थात उन्हें इसका पूर्ण ज्ञान हो चुका था कि पदार्थ तथा आत्मा पृथक पृथक हैं। उनमें देहात्म बुद्धि ना थी, अतः वे किसी पर क्रुद्ध हुए बिना सारे संसार में अकेले ही घूमने लगे। तात्पर्य प्रभु लिखते हैं, श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, देह स्मृति नाही जार, संसार बंधन कहां तार। जब मनुष्य को यह पूरी तरह अनुभव होने लगता है कि यह देह तथा संसार क्षणिक हैं, तो उसे शारीरिक दुख तथा सुख की परवाह नहीं रहती। जैसा कि श्री कृष्ण भगवद गीता में 2:14 में उपदेश देते हैं, मात्रास्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगम पाइनो नित्यास्तान्तिच्छस्वभारत। हे कुंती पुत्र, इंद्रिय और विषयों के संयोग से होने वाली सुख दुख की प्राप्ति सर्दी गर्मी के आने जाने के समान ही अनित्य और क्षणभंगुर है, इसलिए हे भारत, बिना विचलित हुए उन्हें सहने का अभ्यास करो। आगे ऋषभदेव कैसे लग रहे हैं? उनके सिर के चारों ओर घुंघराली भूरी जटाएं चारों तरफ फैली हैं, जटाएं घुंघराली और भूरी हैं। भूरी समझते कैसे? मतलब जो मतलब अब फीकी पड़ गई हैं, उनका रंग चमक समाप्त हो गई है ना, लाल लाल बाल हो जाते हैं ना। उनके सिर के बाल छितरे थे, क्योंकि उनका शरीर गंदा और निंदनीय था, उपेक्षित था। ऐसा प्रतीत होता था मानो उन्हें किसी भूत ने सताया, जैसे भूत लग गया हो, ऐसे दिखाई दे रहे हैं। जब भगवान ऋषभदेव ने देखा कि जनता उनकी योग साधना में विघ्न डाल रही है, तो उन्होंने इसकी प्रतिक्रिया में अजगर सा आचरण ग्रहण कर लिया। अब घूमते फिरते में लोग जो है घेरते हैं और तंग करते हैं, तो अब क्या कैसे हो गए? अजगर के समान हो गए। अजगर क्या करता है? कहीं नहीं जाता, एक स्थान में पड़ा रहता है। अजगर की वृत्ति उन्होंने धारण कर ली, तो अजगर कैसा होता है? एक स्थान में लेटा रहता है, तो वे लेटे ही लेटे खाते और पीते, पेशाब करते, मल त्याग करते, लेटे लेटे ही उसी पर लुढ़कते पुढ़कते हैं, मल मूत्र के ऊपर भी क्यों? जिसे लोग तंग ना करें। जैसे गौर कृष्णदास बाबा जी भी 6 महीने तो वहां रहे, संडास के स्थानों में रहे, है ना, जहां मल मूत्र की बदबू आती है, तो ऐसे करते थे। यहां तक कि वे अपने सारे शरीर को अपने ही मल मूत्र से सान लेते थे, जिससे उनके विरोधी उन्हें विचलित ना करें। अब कौन आएगा? ऐसा कर रहे हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, जब वह सिद्ध हो जाता है, जो योगी है सिद्ध हो जाता है, तो वो एक ही स्थान पर रह सकता है और परम नियंता उसकी समस्त आवश्यकताओं को पूरा करता है। जब तक वह उपदेशक ना हो, उसे संसार भर में घूमने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक स्थान पर रहते हुए मनुष्य काल और स्थिति के अनुसार भक्ति कर सकता है। जब ऋषभदेव ने देखा कि संसार भर में घूमते रहने से उनको बाधा पहुंचती है, तो उन्होंने अजगर तुल्य एक ही स्थान पर लेटे रहने का निश्चय किया। इस तरह वे लेटे लेटे खाते पीते, मलमूत्र त्यागते और अपने शरीर को उसी में साने रहते, जिससे लोग उन्हें सताए नहीं। इस अवस्था में रहने के कारण जनता ने ऋषभदेव को विचलित नहीं किया, उनके मलमूत्र से दुर्गंध ही नहीं निकली। इन दूसरी बात और भी है, ऋषभदेव के मलमूत्र से दुर्गंध ही नहीं निकली, उल्टी उनका मलमूत्र इतना सुगंधित था कि उसकी सुगंध से 80 मील तक का प्रदेश भर गया सुगंध। सोचो कि उनके मलमूत्र में कितनी सुगंध, 80 मील तक क्षेत्र जो है ना सुगंधित हो गया। इस प्रकार ऋषभदेव ने गायों की वृत्ति का अनुगमन किया, गाय कैसे खाती है, कैसे बैठती है, इस तरह से हरणों का अनुगमन किया, हरणों की जैसा। कौओं की वृत्ति का अनुगमन किया। कभी वे इधर उधर चलते तो कभी एक स्थान पर बैठे रहते, कभी वे लेट जाते। इस प्रकार वे गाय हरण और कौवे के समान ही आचरण करते, उन्हीं के समान वे खाते पीते और मल मूत्र का त्याग करते। इस प्रकार वे लोगों को धोखा देते रहते। इसके बाद और वर्णन है, वे संसार भर में घूमने लगे। अभी वो अब भ्रमण फिर करने लगे। घूमते घूमते वे दक्षिण भारत के कर्नाट प्रदेश में पहुंचे, जहां के रास्ते में कोंक, वेंक और कुटक थे। इस दिशा में घूमने की उनकी कोई योजना न थी, किंतु कुटकाचल के निकट उन्होंने एक जंगल में प्रवेश किया। उन्होंने अपने मुंह में पत्थर के टुकड़े भर लिए और जंगल में नग्न और बाल बिखेरे पागल की भांति घूमने लगे। जब वे घूम रहे थे तो प्रबल दावाग्नि लग गई। दावाग्नि मतलब जंगल की आग। ये अग्नि वायु से झकझोरे गए बांसों की रगड़ से उत्पन्न हुई थी। इस अग्नि में कुटकाचल का पूरा जंगल और ऋषभदेव का शरीर भस्मसात हो गया। तो सुखदेव गोस्वामी परिस्थिति को बताते हैं कि कोंक, वेंक और कुटक के राजा ने, जिसका नाम अरहत था, ऋषभदेव के कार्यकलापों के विषय में सुना। उसने ऋषभदेव के नियमों का अनुकरण करते हुए एक नया धर्म पद्धति चलाया, एक नई धर्म पद्धति चलाई है अरहत ने। इसे क्या कहते हैं? जैन धर्म। इस पापमय कर्मों के योग कलयुग का लाभ उठाकर राजा अरहत ने मोह बस बाधा रहित वैदिक नियमों को छोड़ दिया और वेद विरुद्ध नवीन धर्म पद्धति गढ़ दी। यही जैन धर्म का शुभारंभ था। अन्य अनेक धर्मों ने इस नास्तिकवाद को ग्रहण किया। तात्पर्य में प्रभु लिखते हैं, ऋषभदेव के समय में कोंक और वेंक के राजा ने परमहंस का आचरण करते हुए भगवान ऋषभदेव का अनुकरण किया। ऋषभदेव तो परमहंस अवस्था में थे, सन्यासियों में सबसे ऊंचा जो होता है परमहंस होता है ना, कुटीचक और बहुदक और परिव्राजक और परमहंस है ना। तो परमहंस सबसे ऊंची अवस्था है, तो नकल करने के लिए नहीं है ऋषभदेव का जो आचरण है। लेकिन उसने अनुकरण किया, उसने एक धर्म चलाया और इस कलयुग में जनता की अधोगति का लाभ उठाया। वैदिक साहित्य में कथित है कि इस कलयुग में लोग किसी को भी परमेश्वर मानकर वेद विरुद्ध किसी भी धर्म पद्धति को स्वीकार करेंगे। इस युग के व्यक्तियों को मंदा सुमंद मतिहा कहा गया है, बहुत मूर्ख हैं इस युग में लोग। सामान्यतः उनकी कोई आध्यात्मिक संस्कृति नहीं होती और वे अत्यंत अधम होते हैं, इसी कारण से वे कोई धर्म स्वीकार करेंगे। दुर्भाग्यवश वे वैदिक नियमों को भूल जाते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अधम और परमेश्वर की माया से मोहित व्यक्ति मूल वर्णाश्रम धर्म और उसके नियमों का परित्याग कर देंगे। वे नित्य तीन बार स्नान करके ईश्वर की आराधना का बहिष्कार करेंगे। वे शौच और परमेश्वर को त्याग कर मनमाने नियमों को ग्रहण करेंगे। नियमित स्नान न करने अथवा अपना मुंह न धोने से वे सदा गंदे रहेंगे और अपना केस नुचवाएंगे। वो लोग क्या करते हैं, अपने बालों को तोड़ तोड़ करके निकालते हैं, मतलब शेविंग नहीं करते हैं, एक एक बाल को उखाड़ते हैं, केस नुचवाएंगे। ढोंग धर्म का अनुसरण करते हुए वे फूलेंगे फलेंगे। इस कलयुग में लोग अधार्मिक पद्धतियों की ओर अधिक उन्मुख होंगे। फलस्वरूप में वेदों के अनुयायी ब्राह्मणों, श्री भगवान और अनेक भक्तों का उपहास करेंगे। फिर तात्पर्य में प्रभुपाद जी और भी बात बताते हैं, हिप्पियों की भी बात बताते। आजकल प्रभुपाद लिख रहे हैं, आजकल पाश्चात्य देशों के हिप्पी इस वर्णन के अनुरूप हैं। हिप्पी भी ऐसे हैं, वे गैर जिम्मेदार और असंयमी होते हैं। वे स्नान नहीं करते और वैदिक ज्ञान का मजाक उड़ाते हैं। वे नवीन जीवन शैली और धर्म को गढ़ते रहते हैं। इस समय हिप्पियों के अनेक समूह हैं, किंतु इनका मूल स्रोत राजा अरहत था। अरहत जिसने परमहंस अवस्था को प्राप्त भगवान ऋषभदेव के कार्यकलापों का अनुकरण किया। अरहत को इस बात का ध्यान नहीं हुआ कि यद्यपि ऋषभदेव पागल जैसा आचरण कर रहे थे, किंतु उनके मल मूत्र सुगंधित थे। अगर नकल करना है तो ये भी नकल करूं? अपने मल मूत्र को सुगंधित करके दिखलाओ। अगर नकल करना है तो जिससे मीलों दूर के प्रांत सुवासित रहते थे, उनके मल मूत्र से कितने मील दूर सुगंध जाती थी, कितना 80 मील, 80 मील समझते कितना है, है? मेरे ख्याल से पूरी दिल्ली भर, पूरी दिल्ली सुगंधित हो जाती है, क्यों है ना? 80 मील का मतलब क्या हुआ, पूरी दिल्ली का क्षेत्र हो गया। राजा अरहत के अनुयायी जैन कहलाए और बाद में अनेक लोगों ने उनका अनुसरण किया, विशेष रूप से हिप्पी उल्लेखनीय है जो मायावाद दर्शन की शाखा से संबद्ध हैं, क्योंकि वे अपने को श्री भगवान मानते हैं। ऐसे लोग वेदों के असली अनुयायी आदर्श ब्राह्मणों का आदर नहीं करते और न उनमें परब्रह्म के प्रति आदर भाव रहता है। इस कलयुग के प्रभाव से वे तरह तरह के झूठे धर्म गढ़ते रहते हैं। आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अधम लोग अपने अज्ञानवश वैदिक नियमों से हटकर चलने वाली धार्मिक प्रणाली का सूत्रपात करते हैं। वे अपने मानसिक ढोंगों के कारण स्वयं ही घोर अंधकार में गिरते हैं। हाँ, तो इस श्लोक में युधिष्ठिर महाराज का वर्णन है। सबसे पहले लिखा है चीरवासा। चीरवासा का मतलब क्या है कि जो सड़क में फेंके हुए चिथड़े हैं वो धारण कर लिए। सोचिए पूरी पृथ्वी के सम्राट हैं और अभी क्या कर रहे हैं, सड़क में फेंके हुए चिथड़े धारण कर लिए, फिर निराहार हो, भोजन का त्याग कर दिया। तो प्रभुपाद जी बताते हैं निराहार का मतलब ठोस भोजन नहीं खाते हैं, मतलब पत्ता खाते हैं या जल पीते हैं कुछ इस प्रकार का। फिर बद्धवान वाणी को बांध लिया, मतलब बोलना बंद कर दिया। मुक्त मूर्ध जहा, बालों को बिखेर लिया। दर्शियन आत्मनोरूपम जड़ोन्मत्त पिशाचवत, और अपना रूप आप दिखा रहे हैं कैसे, मूर्ख के समान, उन्मत्त के समान और पिशाच के समान। अनवेक्ष माणो निर्गात अश्रन मन मधुर था। और अब कुछ मतलब देख नहीं रहे किसी को, ये किसी का इंतजार भी नहीं कर रहे हैं, निर्गात निकल गए, घर से बाहर निकल गए अश्रन मन, और बिल्कुल सुनते भी नहीं किसी की कुछ बात, जैसे बहरे हो गए। इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज निकल गए। अब महाभारत में जैसा वर्णन है कुछ दूसरे प्रकार का वर्णन है युधिष्ठिर महाराज का जो है महाप्रस्थान किस प्रकार से हुआ, इसको मैं पढ़ के सुना रहा हूं। जब युधिष्ठिर महाराज ने महान संहार का समाचार सुना, कौन सा महान संहार, यदुवंशियों का, तो महाप्रस्थान का निश्चय करके अर्जुन से कहा, युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन से कहा, श्रुत्वैवं कौरवो राजा वृष्णेनां कदनं महान् प्रस्थाने मतिमाधाये वाक्यम अर्जुनम अब्रवीन। अब अर्जुन से क्या कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज, महामते काल ही संपूर्ण प्राणियों को पका रहा है, पक रहे हैं सब प्राणी काल में, विनाश की ओर ले जा रहा है। अब मैं काल के बंधन को स्वीकार करता हूं, तुम भी इसको देखो। युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, काला पतति भूतानि सर्वाण्येव महामते कालपाशम अहम मन्ये तुमपि द्रष्टुम अर्हसि। अब जब युधिष्ठिर ने ऐसा कहा अर्जुन से, तो अर्जुन ने क्या कहा, अर्जुन ने कहा काल तो काल ही है, इसे टाला नहीं जा सकता। इसका मतलब युधिष्ठिर का समर्थन कर रहे हैं अर्जुन भी। अर्जुन ने कहा काल तो काल ही है, इसे टाला नहीं जा सकता, ऐसा कहकर अपने बुद्धिमान बड़े भाई के कथन का अनुमोदन किया अर्जुन ने। इत्युक्तः सतु कौन्तेयः कालः काल इति ब्रुवन् अनुपद्यते तन्वाक्यं भ्रातुर्ज्येष्ठस्य धीमतः। अब अर्जुन का विचार जान लिया युधिष्ठिर महाराज ने, अब भीमसेन से भी ये बात कही, नकुल सहदेव से भी ये बात कही, और उन्होंने भी उनकी बात का अनुमोदन किया। अर्जुनस्य मतं ज्ञात्वा भीमसेनो यमो तथा अन्वपद्यन्ते तन्वाक्यं यदुक्तं संव्यसाचिनम्। अब धर्म की इच्छा से राज्य छोड़कर जाने वाले युधिष्ठिर ने युत्सु को बुलाकर उन्हीं को संपूर्ण राज्य की देखभाल का भार सौंपा। युत्सु धृतराष्ट्र के एक पुत्र थे यीशु, जो कि वैश्य पत्नी से पैदा हुए थे। ततो युक्तम आनायम प्रव्रजन धर्म काम्यया राज्यम परिदत सर्वम वैश्या पुत्र युधिष्ठिर। फिर अपने राज्य पर राजा परीक्षित का अभिषेक करके पांडवों के बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर ने दुख से आर्त होकर सुभद्रा से कहा। अब युधिष्ठिर सुभद्रा से कहते हैं, अभिषिच्य स्वराज्ये च राजानं च परीक्षितं दुःखार्तश्च ब्रवीन् राजा सुभद्रां पांडवाग्रजः। सुभद्रा जो कृष्ण की छोटी बहन है, अर्जुन की पत्नी है, युधिष्ठिर महाराज सुभद्रा से कहते हैं, बेटी ये तुम्हारे पुत्र का पुत्र परीक्षित कुरुदेश और कौरवों का राजा होगा, और जो यादवों में जो लोग बच गए हैं उनका राजा श्री कृष्ण के पौत्र वज्र को बनाया गया है। श्री कृष्ण के प्रपौत्र हैं वज्र, पौत्र नहीं प्रपौत्र। येस पुत्रस्य पुत्रस्ते कुरुराजो भविष्यति यदूनां परिशेषश्च वज्रो राजा कृतश्च। परीक्षित हस्तिनापुर में राज्य करेंगे और यदुवंशी वज्र इंद्रप्रस्थ में, तुम्हें राजा वज्र की भी रक्षा करनी चाहिए और अपने मन को कभी अधर्म की ओर नहीं जाने देना चाहिए। अभी देखो पागल बहरे बनने के पहले सबको समझा रहे हैं कि तुम्हें अधर्म की ओर मन नहीं लगाना है। परीक्षित हस्तिनापुरे चक्र प्रस्थे यादव वज्रो राजा तो आरक्षो मा चा धर्मे मना कृथा। ऐसा कहकर धर्मात्मा धर्मराज युधिष्ठिर ने भाइयों सहित आलस्य को छोड़कर बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण, बूढ़े मामा वसुदेव और बलराम आदि के लिए जलांजलि दी और उन सबके उद्देश्य से विधि पूर्वक श्राद्ध किया। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के उद्देश्य से व्यास जी, देवर्षि नारद, मार्कंडे, भारद्वाज, याज्ञवल्क आदि सब मुनियों को स्वादिष्ट भोजन कराया। कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए इन सब मुनियों को स्वादिष्ट भोजन कराया। भगवान का नाम कीर्तन करके उन्होंने उत्तम ब्राह्मणों को नाना प्रकार के रत्न, वस्त्र, गांव, घोड़े और रथ प्रदान किए। बहुत से ब्राह्मणों को लाखों कुमारी कन्याएं दी। द्वैपायनम नारदम च मार्कंडेयम तपोधनम भारद्वाजम याज्ञवल्क्यम हरिम उद्दिश्य यत्नवान् अभोज्यत् स्वादु भोज्यम कीर्तियत्वा च सार्गिणम ततो रत्नानि वासांसि ग्रामानस्वान्नथां तथा स्त्रियश्चाद्विज मुख्येभ्यः तदा सदय सहस्रशः। इसके बाद गुरु कृपाचार्य की पूजा की। कृपाचार्य जिंदा थे ना, उनकी पूजा करके पूर्ववासियों सहित परीक्षित को शिष्य भाव से उनके सेवा में सौंप दिया। परीक्षित उनके शिष्य हैं कृपाचार्य के, तो जितने नगर के वासी हैं और परीक्षित को कृपाचार्य की सेवा में सौंपा। उन्होंने देखा कितनी जिम्मेदारियां सौंप रहे हैं सबको। कृपम अभ्यर्चे जागुरुम अथ पौर पुरस्कृतम शिष्यम परीक्षितम तस्मै ददौ भरत सत्तम। इसके बाद प्रजा मंत्री आदि को बुलाकर युधिष्ठिर ने वे जो कुछ करना चाहते थे अपना सारा विचार उनसे कह सुनाया। तदस्तु प्रकृति सर्वा समाना ये युधिष्ठिर सर्वम आचष्ट राजर्षि चिकीर्षितम मथात्मनः। उनकी बात सुनते ही नगर और जनपद के लोग मन ही मन अत्यंत उद्विग्न हो गए। युधिष्ठिर ने जब कहा अपना विचार तो सब बड़े उद्विग्न हो गए। उन्होंने उस प्रस्ताव का स्वागत नहीं किया। वे सब राजा से एक साथ बोले, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या आप हमें छोड़कर कहीं ना जाएं? सब बोले। पौर जान पता जना वृषमुद्विग्न मनसो नाभिनंदन्ते तन्वच नैवं कर्तव्यमिति ते तदोचुस्तम जनाधिपम। परंतु धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर काल के उलट फेर के अनुसार जो धर्म या कर्तव्य प्राप्त था उसे जानते थे, अतः उन्होंने प्रजा के कथन के अनुसार कार्य नहीं किया। सब लोग मना कर रहे थे लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं मानी। उन धर्मात्मा नरेश ने नगर और जनपद के लोगों को समझा बुझाकर उनकी अनुमति प्राप्त कर ली, समझा बुझा करके उनसे अनुमति ले ही ली युधिष्ठिर महाराज ने। फिर उन्होंने और उनके भाइयों ने सब कुछ त्याग कर महाप्रस्थान करने का ही निश्चय किया। इसके बाद क्या करते हैं युधिष्ठिर महाराज? युधिष्ठिर ने अपने अंगों से आभूषण उतार कर बलकल वस्त्र धारण कर लिए। फिर भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव और यशस्विनी, द्रौपदी देवी, इन सब ने भी उसी प्रकार बलकल धारण कर लिए। तथा स राजा कौरव्यो धर्मपुत्रो युधिष्ठिर उत्सृज्य भरणान्यंगाजंग्रहे बलकलान्युत भीमार्जुन यमश्चैव द्रौपदी च यशस्विनी तथैव च गृहो सर्वे बलकलानि नराधिप। इसके बाद ब्राह्मणों ने विधि पूर्वक इष्टी करवाई, कुछ पूजा पाठ करवाया। उन सभी नरश्रेष्ठ पांडवों ने अग्नियों का जल में विसर्जन कर दिया और स्वयं भी महायात्रा के लिए अब प्रस्थित हुए। विधिवन कार्यम नैशकीं भरतर्षभ समुत्सृज्याप्सु सर्वेग्नीं प्रतस्थुर नरपुंगवः। पहले जुए में हारकर पांडव लोग जिस प्रकार वन में गए थे, उसी प्रकार उस दिन द्रौपदी सहित उन पांडवों को इस प्रकार जाते देख नगर की सभी स्त्रियां रोने लगीं, परंतु उन सभी भाइयों को इस यात्रा से महान हर्ष हुआ। ततः प्ररोदुः सर्वां स्त्रियो दृष्ट्वा नरोत्तमां प्रसितान् द्रौपदी षष्ठान् पुराद्युतैजतान् यथा हर्षो भवच्च सर्वेषां भ्रातृणां गमनं प्रति। युधिष्ठिर का अभिप्राय जानकर और वृष्णिवंशियों का संहार देखकर पांचों भाई, द्रौपदी और एक कुत्ता, ये सब साथ साथ चले। एक कुत्ता भी साथ में था, तो आगे चलकर के पता चलेगा कि ये कुत्ता कौन थे। युधिष्ठिर के पिता यमराज थे, युधिष्ठिर की परीक्षा लेने के लिए थे। चले उन छहों को साथ लेकर सातवें राजा युधिष्ठिर जब हस्तिनापुर से बाहर निकले। सात लोग हैं, कौन है सात? पांच पांडव, एक द्रौपदी और एक कुत्ता, सात लोग। जब हस्तिनापुर से बाहर निकले तब नगर निवासी प्रजा और अंतःपुर की स्त्रियां उन्हें बहुत दूर तक पहुंचाने गईं, किंतु कोई भी मनुष्य राजा युधिष्ठिर से ये नहीं कह सका कि आप लौट चलिए। इतने दृढ़ निश्चय थे जाने के लिए कि किसी की हिम्मत नहीं थी कि कहे कि आप लौटो। आत्मना सप्तमो राजा निर्ययो गये सायवयात् पौरैरनुगतो दूरं सर्वैरन्तःपुरे सतम् अचैनम् असकन् कश्चिन् निवर्तस्वेति भासितुम्। धीरे धीरे पुरवासी और कृपाचार्य आदि युयुत्सु को घेर कर उनके साथ ही लौट आए। निवर्तन्ते तथा सर्वे नरानगर वासिनः कृपया प्रभृतियश्चैव युयुत्सुं पर्यवारयन्। नागराज की कन्या उलूपी उसी समय गंगा जी में समा गई। नागराज कन्या उलूपी कौन थी? अर्जुन की पत्नी थी। उसी समय गंगा जी में समा गई। चित्रांगदा मणिपुर नगर में चली गई और शेष माताएं परीक्षित को घेरे हुए पीछे लौट आईं। विवेश गंगाम कौरव्य उलूपी भुज गौतमाम चित्रांगदापी मणिपुर है पुरम प्रति शिष्टा परीक्षितम तुन्या मातरा परिवार। इसके बाद महात्मा पांडव और यशस्विनी द्रौपदी देवी सबके सब उपवास का व्रत लेकर पूर्व दिशा की ओर मुह करके चल दिए। पांडवाश्च महात्मानु द्रौपदी च यशस्विनी कृतोपवास कौरव्य प्रयो प्राण मुखासत। वे सब के सब योग युक्त महात्मा तथा त्याग धर्म का पालन करने वाले थे। उन्होंने अनेक देशों, नदियों और समुद्रों की यात्रा की। योग युक्ता महात्मान त्याग धर्मम उपेयुसहा अभिजगमुर बहून देशान सरिता सागरां तथा। आगे आगे युधिष्ठिर चलते थे, देखो कितना शिष्टाचार है। सबसे आगे युधिष्ठिर चलते थे, उनके पीछे कौन? भीमसेन। और भीमसेन के पीछे कौन? अर्जुन। और उनके भी पीछे क्रमशः नकुल और सहदेव चलते थे।
युधिष्ठिरो यावग्रे भीमस्तु तदनन्तरम् अर्जुनस्तस्य चान्वेवयम् यमोचापि यथाक्रमम्।
और सबके पीछे सुंदर शरीर वाली श्याम वर्णा कमल दल लोचना युवतियों में श्रेष्ठ है द्रौपदी चल रही थी।
पृष्ठस्तु वरारोहा श्यामा पद्म दलेक्षणा द्रौपदी योजिताम श्रेष्ठा यो भरत सत्तम।
और चलते चलते उसके पीछे कुत्ता है, सात लोग कैसे चल रहे हैं, एक के पीछे एक। कहां तक पहुंचे, लाल सागर के तट पर जा पहुंचे।
स्वाचे वानु या वे कहा प्रसितान पांडवान वनम रमेण ते और वीरा लोहित्यम सलिलार्णवम।
फिर वहां लाल सागर से ये पांडव वीर अब दक्षिण की ओर मुंह करके चलने लगे। पहले पूर्व दिशा में चले, अब दक्षिण की ओर चले।
तथोग्निर्ण भरत श्रेष्ठ है तत्रैवांतर अधीयत पांडव वीरा सतस्ते दक्षिणा मुखम।
फिर वे लवण समुद्र के उत्तर तट पर होते हुए दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर चलने लगे। इसके बाद वे केवल पश्चिम दिशा की ओर मुड़ गए। आगे जाकर उन्होंने समुद्र में डूबी हुई द्वारकापुरी को देखा। फिर योग धर्म में स्थित हुए पांडवों ने वहां से लौटकर पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करने की इच्छा से उत्तर दिशा की ओर यात्रा की।
तथा पुनः समावृत्ता पश्चिमां दिशमेवते ददृशुर द्वारकां चापि सागरेण परिप्लुताम् उदीचीं पुनरावृत्य भरत सत्तमां प्रादिक्षण्यं चिकीर्षन्ता पृथिव्या योग धर्मिणः।
तो इस तरह से हमने कुछ चर्चा की है कि किस प्रकार से महाप्रयाण करते हैं युधिष्ठिर महाराज पांडवों के साथ में। आप किसी का कोई प्रश्न है या कोई चर्चा? इनका प्रश्न है कि ऋषभदेव के बारे में जो हमने बताया, क्या कलयुग में ये संभव है कि ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति आ जाए? हाँ, कोई भी व्यक्ति अगर आ भी जाता है ऐसी स्थिति में तो भी ऐसा आचरण नहीं करता। जैसे कि प्रभुपाद जी क्या कम थे किसी से भी, है ना, लेकिन ऐसा आचरण नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको कि सिखाया जाए। लेकिन ऋषभदेव जो है ना, परमहंस के जो सन्यासी हैं, उसका आचरण कर रहे थे, क्योंकि उस समय और भी थे परमहंस आश्रम में सन्यासी, तो उनको शिक्षा देने के लिए ऋषभदेव ने ऐसा आचरण किया। बहुत थे, तो अभी तो बहुत करोड़ों करोड़ों में कोई एक व्यक्ति हो सकता है ना, तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि भगवान तो जो है ना धर्म की स्थापना करते हैं कि जिस धरातल पर लोग होते हैं उस धरातल से कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए। तो ऋषभ देव ने जैसा आचरण किया तो वो उस समय के लिए था, है? लेकिन जो है जो श्रेष्ठ भगवान गीता में कहते हैं यदि आचरद श्रेष्ठ तत्देवे तरोजना, श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करे सामान्य लोग ऐसे ही आचरण करते हैं, है ना। तो भगवान कृष्ण स्वयं भी कहते हैं यदि हम न वर्ते हम जातु कर्मण्य तन्निरता, अगर मैं जो है ना सावधानी पूर्वक अगर आचरण ना करूं, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य आपाद सर्वसा, तो ये जो मनुष्य है ये पूरी तरह से मेरे अनुसार आचरण करने लगेंगे। उत्सी देवी रिमे लोकान कुरियाम कर्म चेत हम संकर से करता श्याम उपहन्याम मा प्रजा, तो इन सब का जो नाश करने वाला मैं ही बनूंगा,
इनके नाश का कारण मैं बनूंगा।
आप समझे ना, तो ऋषभ भगवान का जो आचरण है वो उस समय के जो है ना कुछ परमहंस सन्यासियों के लिए उचित था, लेकिन अब वो जो है ना वही तो कलयुग में पाखंड है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर तुम्हें नकल करनी है तो अपने मल मूत्र को सुगंधित करो पहले, है ना। तो वो जो जैन धर्म के जो सन्यासी हैं वो क्या करते हैं, उसी बर्तन में मल मूत्र त्यागते हैं, उसी बर्तन में खाते हैं, है ना। तो कितना गंदा है, है ना। तो अगर अगर नकल करनी है तो पहले ये करो, है कि नहीं। तो ये तो जो है ना बहुत ही अशुद्ध कर्म है, है कि नहीं। मुंह नहीं धोते हैं और जो है स्नान नहीं करते हैं, है ना, तो बहुत ही अशुद्ध है। इनका प्रश्न है कि वो उत्तर दिशा की ओर गए, हिमालय की ओर गए, तो वृंदावन क्यों नहीं गए? नहीं, उस समय जो है वृंदावन भगवान कृष्ण जब इस पृथ्वी को छोड़ के गए तो वो भूमि भी चली गई, है ना। बाद में बद्रीनाथ ने जब देखा कि अब कोई नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो जो वृंदावन वासी वो भी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, है ना, तो फिर सांडिल्य मुनि को बुलाया, फिर वृंदावन के जितने भी स्थान हैं, लीला स्थान हैं, उनको फिर से बनवाया बद्रीनाथ ने, है ना। तो फिर वो आगे की बातें हैं, लेकिन युधिष्ठिर महाराज उस समय जो कार्य कर रहे हैं उस समय के लिए उचित था, है ना। और वो इतने योग्य थे कि जो है ना ऐसा कार्य कर सकते थे, लेकिन ये अब जो है ना सबके लिए अनुकरणीय नहीं है। जैसे युधिष्ठिर महाराज ने किया, वो इस समय कोई योग्य नहीं है ऐसा करे, है ना। तो इस समय अब क्या करना चाहिए, जो गुरु परंपरा से जो हमें आचार्य प्राप्त हो रहे हैं उनके आदेश के अनुसार अब हमें करना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह का जो जीवन है वो हम लोग नहीं बिता सकते हैं, ठीक है ना। और कोई प्रश्न? इनका प्रश्न कि धर्मायु दृष्टि ने जब वेशभूषा बदली तो उसका क्या कारण था, उससे क्या प्रभाव पड़ा। वेशभूषा जब बदली तो कारण सब उन्होंने बता दिया और अनुमति भी मांग ली प्रजा से, और कारण हमने तो समझाया कि क्या कारण है, कोई बता सकता है कि क्या कारण था? कि लोग परेशान ना करें, अब उनका इस भौतिक संसार में कुछ भी कर्तव्य नहीं रहा, अब उन्हें कुछ भी नहीं देखना है, ना कुछ सुनना है, ना कुछ बोलना है, है ना। अब जिसकी जो मर्जी है करो, हमारा काम सब पूरा हो गया, है ना। अब उनको परलोक की तैयारी करनी है, है ना। अब इस जीवन में उनका कोई भी अब काम नहीं रहा कि अब कुछ और जानना हो, इस भौतिक संसार के बारे में कुछ बातें जाननी हो, कुछ सुननी हो या कुछ बतानी हो, कोई मतलब नहीं है, है ना। तो इसका प्रभाव यही पड़ा प्रजा में, यही पड़ा कि ये लोग जो है ना कितने कटिबद्ध हैं अपने अगले जन्म के बारे में, कितने जो है मतलब ये दृढ़ निश्चय के साथ में तैयारी कर रहे हैं, है कि नहीं। तो ये चीज उन्होंने स्थापित किया विरक्ति का, जो ना कितना भाव है उनके अंदर, तुरंत ही उन्होंने त्याग दिया, तुरंत। जैसे एक पक्षी वृक्ष में बैठा हुआ है और वृक्ष टूट जाए तो पक्षी उड़ जाता है कि नहीं, उसी प्रकार से ये जो पांडव हैं और द्रौपदी हैं ये जीवन भर विरक्त थे, और ये विरक्ति का जो है जो ये जो प्रमाण है ये मिलता है अंत काल में, जिस समय मतलब उनको पता चला कि भगवान कृष्ण चले गए हैं तो तुरंत ही छोड़ दिया, क्योंकि पहले से विरक्त थे वो, उनकी आसक्ति थी ही नहीं, शुरू से ही भी आसक्त नहीं थे संसार में भोगों के प्रति। तो ये चीज जो है तभी संभव है, अंत काले जमावे, है ना। यम यम वापि स्मरण भावम तेजे कले ब्रम, है ना। तो जिस भाव का स्मरण करता है कोई व्यक्ति अंतकाल में, सदा तद्भाव भाविता, एवं वो अंतकाल में भाव वही आता है, सदा तद्भाव भाविता, जीवन भर जिस भाव का चिंतन करता रहा, है ना। तो युधिष्ठिर महाराज जीवन भर त्याग का ही चिंतन करते रहे, इसलिए अंतकाल में उनको त्याग का भाव पैदा हुआ, तुरंत त्याग दिया उन्होंने, है ना। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की श्री श्री राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा गौर निताय सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय।